الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين میرے محترم بزرگوں دوستو بھائیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ پچھلے دو ہفتے اور ان میں دو جمعے بھی شامل تھے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل و کرم سے حجاز مقدس میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائی اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے ہم جیسے لوگوں کو تو وہاں پر مارنے کی بھی اجازت نہ ہونی چاہیے تھی لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو پر بڑا رحیم ہے اس نے یہ حاضری کی سعادت عطا فرما دی اور ایک بار پھر اس بات کا اندازہ ہوا کہ مسلمان حرمین شریفین سے کتنی زیادہ محبت رکھتے ہیں کہ اس وقت بھی جبکہ ابھی رمضان شروع نہیں ہوا اطراف عالم سے پروانوں کا ایک سیلاب ہے جو حرمین شریفین کے ارد گرد موجود ہے اللہ تعالیٰ نے مجھ ناکارہ کو بھی حاضری کی توفیق بخشی اور سب سے زیادہ جس بات کی طرف دعا کی توفیق ہوئی وہ ہمارے وہ ابتر حالات ہیں جن سے ہم اپنے ملک میں اور امت مسلمہ بحیثیت مجموعی گزر رہی ہے ان حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے کوئی اور سہارا نہیں ہے سوائے اللہ جل جلالہ کی ذات کے اور ہر مسلمان کو ان کی درستی کی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے اور مانگتے رہنے کی ضرورت ہے جیسا میں سفر سے پہلے عرض کرتا رہا ہوں کہ ان جیسے حالات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو لائے عمل بتایا ہے وہ یہ ہے کہ ہر انسان اپنی جگہ اپنی اصلاح کی فکر میں لگ جائے अगर एक इंसान भी दुरुस्त हो गया तो कम से कम एक चिराग जल गया, फिर अल्लाह तबारक व ताला उस चिराग से दूसरे चिराग जलाते हैं। ये अल्लाह ताला की सुन्नत है। लिहाजा हर इंसान को अपनी इस्लाह की फिक्र करनी चाहिए। उस सिलसिले में कुछ तफसीलात भी पिछले दिनों मैंने अर्ज़ की थी, और ये देखकर तबीयत पर असर होता है कि माशाल्लाह हरमैन शरीफ़ैन में चारों तरफ से मुसलमान बहुत बड़ी तादाद में अब भी जमा हैं। उनके दिलों में बैतुल्ला शरीफ की महब्बत है, मदीना मुनव्वरा की और रोज़ा अक़दस की अज़मत है, और वहाँ जाकर वो मुख्तलिफ़ क़स्म की इबादतों में मशगूल रहते हैं। लेकिन जिस बात से अफसोस होता है वो ये कि ये तो लोगों ने समझ लिया है कि भाई हरमैन शरीफ़ैन में जाकर हम गुनाहों से माफ़ी मांग लें, लेकिन अपनी इस्लाह की फ़िक्र हो जाए कि आइंदा जब वापस लौट कर आएँ तो उनकी ज़िंदगी में कुछ फ़र्क आ गया हो, इबादात की जो अहमियत पहले थी वो पहले नहीं थी अब ज़्यादा पैदा हो गई हो, पहले आदमी नमाज बाजमात का पाबंद नहीं था, उम्रा करने के बाद मदीना मुनव्वरा की ज़ियारत के बाद उसको ज़्यादा एहतमाम हो गया हो कि भाई नमाज बाजमात अदा किया करूं, हलाल आमदनी की का एहतमाम कि मेरी रोज़ी जो है वो हलाल है या हराम है इसकी फ़िक्र पैदा हो जाए, या अपने घर वालों के साथ अल्लाह ताला ने जो हुकूक वाबस्ता किए हैं उन हुकूक को सही तरीक़े से अदा करने का एहतमाम हो जाए। अफसोस है कि इसकी अलामतें नज़र नहीं आती। ये समझते हैं कि हम अपने गुनाह माफ़ करके आ गए, लेकिन आइंदा ज़िंदगी में फिर वही उसी बेढब तरीक़े पर ज़िंदगी गुजर रही है, न हलाल और हराम की फ़िक्र है, न जायज़ और नाजायज़ का एहतमाम है, न इबादात को उनको सही तरीक़े से अदा करने की अहमियत दिल में है। आकर दावतें हो जाती हैं, जश्न मना लिए जाते हैं, फूलों के हार डाल दिए जाते हैं कि भई ये साहब उम्रा करके आए हैं, चलो ये तो इजहार है मसर्रत का, कोई हर्ज नहीं, लेकिन असल चीज़ जो लेकर आनी है वो तो ये कि हम जब वापस आएँ तो हमारे हालात ज़िंदगी अल्लाह जल्ला जलालुहु की मर्ज़ी और नबी करीम सरवरदु आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक, इसकी फिक्र बहुत कम लोगों में नज़र आती है, और उसी का नतीजा है कि हम इन आफतों में मुब्तला हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह ये शाबान का महीना शुरू हो गया है, और ये महीना रमज़ान मुबारक का मुकद्दमा है, रमज़ान मुबारक की तमहीद है। तो ये जो मैं पिछले दिनों अर्ज़ करता रहा हूँ कि हर आदमी अपनी फ़िक्र करे, अपने हालात को दुरुस्त करने का एहतमाम करे, उसका ये अब बहुत अच्छा मौका आ रहा है। ये शाबान का महीना है, फिर उसके बाद रमज़ान मुबारक इंशाल्लाह आने वाला है। ये अय्याम अल्लाह तबारक व तआला ने मुक़द्दस रखे हैं, इनसे फ़ायदा उठाना चाहिए, और इन दिनों में अपने आप को शरीयत और सुन्नत के दायरे में रहने की फिक्र करनी चाहिए। शाबान का महीना ये उन महीनों में से है कि जिसके कुछ फ़ज़ाइल वारिद हुए हैं, और हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साबान में भी नफली रोज़े बहुत रखा करते थे। बल्कि एक हदीस में आता है कि किसी और महीने में नफली रोज़े रखने का आप इतनी कसरत से रोज़े नहीं रखते थे जितनी कसरत से साबान में रखते थे। यहाँ तक कि आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि मेरे रमज़ान के अंदर जो रोज़े रह जाते थे निस्वानी मजबूरी की वजह से, तो वो रोज़े भी मैं शाबान में रखा करती थी। और वजह ये थी कि इस ज़माने में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बकसरत रोज़े रखते थे और दिनों में मैं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मशगूल रहती थी तो उसमें मौका ज़्यादा नहीं मिलता था। तो पिछले रमज़ान के जो रोज़े मुझसे कज़ा हो गए वो मैं शाबान में हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रखती थी कि आपका रोज़ा नफली होता था और मेरा कज़ा का रोज़ा होता था। और यूँ तो सारे ही रमज़ान शाबान में रोज़े रखने किसी भी वक्त में रख सिर्फ इतना मना किया है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि रमज़ान से दो दिन पहले के जो दिन हैं उनमें रोज़ाना रखा जाए ताकि रमज़ान की तैयारी हो जाए। बाकी किसी भी दिन रोज़ा रखें तो अच्छी बात है। और ख़ास तौर पर इस शाबान में जो 15वीं शब आ रही है जिसको हम आम तौर से शब बरात कहते हैं, लोग शब बरात कहते हैं बरात, तो बरात एक तो निकाह वाली बरात होती है, वो समझते हैं कि ये कोई बरात आएगी इसमें इस मलाइका की, तो इस वजह से शब बरात कहते हैं। बरात नहीं है, लफ्ज बराअत है, शब बराअत। बराअत के माना होते हैं किसी जुर्म से बरी हो जाना। तो ये रात ऐसी है कि अगर बंदा चाहे तो अपने सारी पुरानी साबिक ज़िंदगी के गुनाहों से उस जराइम से बरी हो जाए, इसलिए कुछ शब बरात कहते हैं। और ये 15वीं शब है इस शाबान के महीने की, जो इंशाल्लाह इस हफ्ते में बुध के दिन आने वाली है। तो ये रात भी अपनी एक अहम फजीलत रखती है। बाज लोगों में यह मशहूर है कि शब बरात की कोई हकीकत नहीं है और शब बरात के कोई ख़ास फजाइल नहीं हैं, लेकिन ये बात दुरुस्त नहीं। शब बरात की फजीलत तकरीबन 18 सहाबे किराम से मरबी है, अगरचे उनकी सनदों में कलाम है लेकिन बहसियत मजमूई 18 सहाबे किराम से ये मरवी है कि रसूल करीम सरवरदो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रात के फजाइल बयान फरमाए। और इस रात में अल्लाह ताला की तरफ रुजू करने, नफलें पढ़ने और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने और दुआ करने की ख़ास फजीलत पारित हुई है। लिहाजा ये रात आने वाली है इसी हफ्ते में, तो हम जो काफ़ी दिन से ये अर्ज कर रहे हैं कि हर शख्स अपनी इस्लाह की फ़िक्र में लग जाए, अपने हालात को दुरुस्त करे, अपने ज़िंदगी को सुन्नत के मुताबिक बनाए, अल्लाह ताला की मर्ज़ी के मुताबिक बनाए, गुनाहों से परहेज़ करे, हलाल व हराम की फ़िक्र रखे, जायज़ व नाजायज़ की फ़िक्र रखे, तो उसके लिए ये एक अच्छा मौका आ रहा है कि हम शबे बरात के अंदर खुसूसी तौर पर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे। और सिर्फ अपने गुनाहों की नहीं बल्कि पूरी उम्मत की, तरफ से माफी मांगे कि इस वक्त हम जिन मसायब व आलाम का शिकार हैं, चारों तरफ से फितने उमड़ रहे हैं, मुसलमानों के ऊपर जिंदगी का अरसा तंग हो रहा है, कुफ्र इल्हाद की ताकतें बढ़ती जा रही हैं और दीन पर अमल करने वाले सुकड़ रहे हैं, या अल्लाह अपने फजल करम से इस हालत को तब्दील फरमा दी और हमें अपनी इस्लाह की फिक्र अता फरमाई। ये दुआ करनी चाहिए। इस दुआ का ये बेहतरीन मौका आने वाला है शब बरात के मौके पर। एक अजीब अलमिया ये है कि जो रातें आती हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने जिसमें अल्लाह ताला अपना ख़ास फजल व करम नाजिल फरमाते हैं, इनका असल मकसद होना चाहिए था कि बंदे अल्लाह ताला से रुजू करें और इबादत में और दुआओं में ये रातें गुजारें, लेकिन शैतान जो है वो कभी ये पसंद नहीं करता कि मुसलमान सही रास्ते पर चलें। तो शबे बरात के साथ भी कुछ उसने ऐसी रस्में जोड़ दी हैं जिनका न शरीयत से कोई ताल्लुक है, न सुन्नत से कोई ताल्लुक है और न उनका कोई अजर सवाब है, बल्कि उल्टा गुनाह है। मसलन पता नहीं कहाँ से शबे बरात के अंदर आतिशबाजी का सिलसिला ख़ास तौर पर हमारे बर्रे सगीर में चल निकला कि शबे बरात के मौके पर आतिशबाजी करनी चाहिए। लोग आतिशबाजी का सामान लेकर फरोख्त करते रहते हैं, लोग खरीदते हैं और आतिशबाजी की जाती है। बाज़ औक़ात इस आतिशबाजी के नतीजे में महल्ले के महल्ले जलकर राख हो गए हैं। हमारे पाकिस्तान कराची में जो बोहरी बाजार है वो इसी आतिशबाजी के नज़र हुआ और पूरे का पूरा बाजार जलकर राख हो गया। ये ऐसी चीज़ है कि जिसका न कोई शरीयत से ताल्लुक, न किसी सुन्नत से ताल्लुक, न इस पर कोई अजर सवाब, बल्कि ये उल्टा गुनाह है। लिहाजा इसमें लगा दिया शैतान ने, इस मुकद्दस रात को इस तरह ज़ाय करने के में लगा दिया। एक और रस्म वो हलवा बनाने की है। हलवा पकाकर सारे दुनिया में तकसीम करो। अब इस हलवे की न कोई असल है, न इसका कुरान सुन्नत में कोई तज़किरा है, लेकिन लोग हलवा बनाकर तकसीम करने में लगे हुए हैं। रात के औकात जो हैं वो इस काम में सर्फ हो रहे हैं। तीसरे ये कि इसमें जलसे मुनाकिद कर दिए जाते हैं, तकरीरें हो रही हैं लंबी चौड़ी। अब ये रात जलसों की और तकरीरों की नहीं है। जलसे तकरीरें या जो कुछ इसकी फजीलत बयान करनी हो वो पहले बयान करनी चाहिए। जब रात आ जाए तो ये रात तो अमल की रात है, लिहाजा इसको जलसों में तकरीरों में ज़ाय करना ये इस रात की नाकदरी है। होता क्या है कि जलसा हुआ, लंबी चौड़ी तकरीरें हुई, आखिर में थक थक आ गए लोग और जाके सो गए पढ़ के, तो ना इस रात की कोई फजीलत हासिल करने का मौका मिला, ना उसमें बारी ताला की रहमतें मुतवज्जे करने का कोई एहतमाम हुआ और रात यूं ही गुजर गई। तो मेरे अजीजों, ये रात, जो रातें आती हैं मुकद्दस रातें, جن میں اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت متوجہ ہوتی ہے بندوں کی طرف، وہ در حقیقت اس کام کے لیے ہیں کہ بندہ تنہائی میں اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ سے رابطہ قائم کرے، وہ ہو اور اس کا اللہ ہو، اور اس میں اللہ تعالیٰ سے رابطہ کرنے کی کیا صورت ہے، جو صحیح طریقہ ہے رات کو گزارنے کا، وہ یہ ہے کہ ایک تو نفلوں کی کثرت، نوافل کی کثرت، اور خاص طور پر کم از کم 8 رکعتیں نفلی 8 رکعتیں پڑھی جائیں، 2-2 رکعت کر کے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات آخر شب میں، عام طور پر آخر شب میں 8 رکعتیں پڑھا کرتے تھے، 2-2 رکعتیں کر کے، اور اس میں طویل قیام فرماتے تھے، لمبا قیام، لمبا رکوع، لمبا سجدہ. ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے شوق ہوا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کی نماز پڑھیں تو میں بھی ساتھ میں جا کے شریک ہو جاؤں. جب جا کے شریک ہوا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا طویل قیام کیا، اتنی طویل قرات کی کہ میں برداشت نہ کر سکوں. غرض رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان رات کے وقت میں جو نمازیں منقول ہیں 8 رکعتیں، کم از کم 8 رکعتیں بندہ رات میں پڑھ لے، حتی الامکان کوشش کرے کہ خشوع خضوع کے ساتھ یہ رکعتیں ادا ہوں. جس کا طریقہ یہ ہے کہ جب شروع میں نماز کے لیے کھڑا ہو تو اللہ تعالیٰ سے دعا کر لے، یا اللہ میں یہ 8 رکعتیں آپ کی بارگاہ میں پڑھنا چاہتا ہوں، مجھے یہ خشوع کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اس کے لیے ایک دعا بھی ہے کہ ان صلاتی و نسوکی و محیائے و ماتی للہ رب العالمین، یہ کلمات بھی کہہ لے اگر یاد ہوں تو، اور دعا کر لے یا اللہ میں خشوع کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہوں، آپ اپنی رحمت سے خشوع کے ساتھ مجھے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں. خشوع کا طریقہ کیا ہے کہ جو الفاظ زبان سے نکالے وہ دھیان سے نکالے. الحمدللہ رب العالمین اگر پڑھا تو دھیان الحمدللہ رب العالمین کی طرف ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کی حمد کر رہا ہوں. الرحمن الرحیم جب پڑھا تو الرحمن، پتہ ہو کہ میں الرحمن الرحیم پڑھا. یہ جو ہم لوگوں کی عادت بن گئی ہے کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو ایک آٹومیٹک مشین چل جاتی ہے اور پتہ بھی نہیں چلتا ہم نے کیا پڑھا کیا نہیں پڑھا. اگر نماز ختم کرنے کے بعد یاد کرنے کی کوشش کریں بھائی پہلی رکعت میں کیا پڑھا تھا اور دوسری رکعت میں کیا پڑھا تھا، تو اکثر یاد بھی نہیں آتا، بکثرت یاد بھی نہیں آتا، کیونکہ وہ ایک آٹومیٹک مشین ہے چل پڑی، چند صورتیں رٹی ہوئی ہیں، بس وہ خود بخود پڑھنی شروع کر دی اور ختم کر دی نماز. تو اس لیے ان راتوں میں خاص طور پر اس کا اہتمام کریں کہ ہم جو الفاظ زبان سے نکال رہے ہیں ذہن اور دماغ ان کی طرف ہو. اور اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ کچھ صورتیں تو ایسی ہیں جو ہماری زبانوں پر چڑھی ہوئی ہیں، تبت یدا بالہ اور قل اللہ احد اور انا اعطینا وغیرہ، یہ ہمارے زبانوں پر چڑھی ہوئی ہیں، وہ خود بخود زبان سے منہ کے نکلنی شروع ہو جاتی ہیں. کوشش کریں کہ ایسی صورتیں پڑھیں کہ جو زبان پر چڑھی ہوئی نہیں ہیں. अब वो सूरतें कि जो जबान पर चढ़ी हुई नहीं है, मसलन निदालहा पढ़ो, वल आदियात पढ़ो, और अगर किसी अल्लाह के बंदे को लंबी सूरतें याद हैं, खुदा करे याद हों, तो लंबी सूरतें पढ़े और उनको ध्यान से पढ़े। तो सबसे अफजल काम इस रात में यह है, आठ कम से कम आठ रकतें, और अगर तबील सूरतों के साथ हो, याद हो तो तबील सूरतों के साथ, रुकू भी लंबा, सजदा भी लंबा, और उसमें सुभान रब्बिल अजीम सुभान रब्बिल आला तो पढ़ा ही जाता है, लेकिन उस रुकू में भी और ज्यादातर सजदे में जो दुआएं याद हों, मासूर दुआएं, कुरान करीम की दुआएं या मुनाजात मकबूल वगैरह में जो दुआएं लिखी, वो अगर याद हों तो वो दुआएं अरबी जबान में पढ़ें। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनत व फिल आखिरत हसनत, सजदे में पढ़ें। अल्लाहुम्मा रब्बना अग़फिर लना ज़ुनूबना व इसराफना फी अमरिना व थब्बित अक़दामना व अंसुरना अला अल-क़ौमिल काफिरीन। अल्लाहुम्मा आइना अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादती। जितनी दुआएं याद हों, और नहीं है तो अभी से फिक्र करके याद कर लो, मुनाजत मकबूल छपी हुई है, उसमें कुरान की दुआएं भी हैं, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं भी हैं, वो उनको वो दुआएं पढ़ें सजदे में। खास तौर रुकू में अफजल यह है कि बारी ताला की तस्बीह और हमदो सना ज्यादा की जाए, सुभान रब्बिल अजीम तो हम कहते ही हैं, लेकिन तस्बीह के और भी कलिमात हैं, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर मसलन, सुब्हुन कुद्दूस मसलन, या सुभान दिल मिल्की वल मलकूत, सुभान दिल इज्जत वल अजमत वल हैबत वल किबरिया वल जबरूत, ये जिसको आमतौर पर लोग तरावी के दौरान लिख कर लटका देते हैं, वो तरावी के दौरान तो मनकूल नहीं है, लेकिन तस्बीह के तौर पर रुकू के अंदर पढ़ना मनकूल है, वो पढ़ें। और सजदे में दुआएं ज्यादा करें, दुआएं कुरानी दुआएं हों या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो दुआएं मनकूल हैं वो हों, इस तरह आठ रकतें। फिर मजीद तौफीक हो जाए जागने की तो कुरान करीम की तिलावत जितनी हो सके वो कर लें, और फिर इन सब का खुलासा और इन सब का इत्र अपनी जबान में दुआ, अपनी जबान में दुआएं करो, अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने अज़ीज़ अहबाब के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने कौम के लिए, पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए। अरे गिड़गिड़ाकर मांग लो इस मरतबा अल्लाह तबारक व तआला से, या अल्लाह हम फंस गए हैं अजाब में, अपने बदामालियों के अजाब में फंस गए हैं, अल्लाह हमें निकाल ले इससे, कोई है कायनात में किसी में ताकत नहीं है कि इस हमें इस वबाल से निकाले, इस अजाब से निकाले, इस शामत आमाल से निकाले, सिवाय अल्लाह जला जलालू, और किसी के अंदर भी ताकत नहीं, उसी से मांगो, या अल्लाह जो कुछ हो रहा है वो आपकी मशीयत से हो रहा है, और इससे निकालना भी सिवाय आपके कोई और नहीं कर सकता, अल्लाह हमें इस मुसीबतों से निकाल लीजिए, हमें इस बहरान से निकाल लीजिए, और उम्मत मुस्लिमा जो जगह जगह आफतों की शिकार है, कुफार का जुल्म सितम उनके ऊपर हो रहा है, कश्मीर में, फलस्तीन में, हिंदुस्तान में, शाम में, लीबिया में, और दूसरे इस्लामी मुल्कों के अंदर, उन सब के लिए दुआ करो, और इस सबसे आगे बढ़कर इस बात के लिए दुआ करो, या अल्लाह जिन हमारे जिन अमाल की वजह से ہم ان مصیبتوں کے شکار ہیں، اے اللہ وہ اعمال ہم سے چھڑوا دیجئے اور نیک اعمال کی توفیق عطا فرما دیجئے. اپنی اصلاح کے لیے یہ رات جو آنے والی ہے اس کو یہ سمجھو کہ یہ سنگ میل ہے، ایک بہترین موقع ہے اپنے آپ کو جہنم سے نجات دلوانے کا اور ان مصیبتوں سے نجات دلوانے کا جس میں ہماری پوری امت گرفتار ہے. یہ تین کام ہیں جو خصوصی طور پر اس رات میں کرتے ہیں. جتنا جس کو موقع مل جائے، ساری رات جاگنا بھی کوئی ضروری نہیں ہے، جتنا موقع مل جائے. اور ساتھ ہی اگر کوئی آدمی، بعض اوقات لوگوں کی رات کی ڈیوٹی ہوتی ہے نہیں کر سکتے، تو اتنا کر لیں کہ مغرب، عشاء اور فجر تینوں نمازیں جماعت کے ساتھ مسجد میں ادا کریں، تو انشاءاللہ اس کی برکات سے محروم نہیں رہیں. ایک مسئلہ قبرستان جانے کا بھی ہے. سمجھا جاتا ہے کہ شب برات میں اب قبرستان جانا چاہیے، وہاں پر مردوں کے لیے دعا کرنی چاہیے. یہ کوئی ایسی سنت نہیں ہے کہ جو جس پر آپ نے ساری زندگی عمل فرمایا ہو. ایک مرتبہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ تشریف لے گئے تھے آپ جنت البقیع میں، ساری زندگی میں ایک واقعہ ہے. تو کبھی ہر آدمی بغیر اہتمام کے چلا جائے تو کوئی گناہ بھی نہیں ہے، لیکن اس کو یہ سمجھنا کہ یہ سنت مستمرہ ہے، یعنی ایسی سنت ہے جو ہر سال ضرور کرنی ہے، یہ بھی صحیح نہیں ہے. بہرحال خلاصہ یہ کہ نماز کی کثرت خشوع کے ساتھ، دوسرے دعائیں اب سب کے لیے، تلاوت قرآن، ان تین کاموں میں حتی الامکان اس رات کو لگایا جائے. اور اپنے لیے بھی یہ دعا کی جائے کہ یا اللہ میرے اندر جو کوتاہیاں غلطیاں ہیں، جو جن گناہوں میں مبتلا ہوں، یا اللہ ان سے مجھے نکال دی. تو یہ اپنی اصلاح کی طرف ایک بہترین پہلا قدم ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنے رحمت سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے اور اس سے ہماری زندگیوں میں تبدیلیاں لانے کا اس کو ذریعہ بنا دے. وآخر دعوانا ان الحمد www.dasquran.com